धवला पुस्तक दसवी लेक्चर नंबर दो ओ नमः सिद्धेभ्य ओ नमः सिद्धेभ्य ओ नमः सिद्धेभ्य ओ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरियाणम् नमो वर्चायाणम् नमो लोये सौवसाहूणम् कम्मठजनियवेयण उवहि समुत्तिन्नये जिने नमिहुम् वेयण महाहियारम् विविह हि आरम् परुवेमो आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। उसमें चौथा जो वेदना खंड है उसमें अभी हमारा वेदना अनुयोग द्वार चल रहा है। नवी पुस्तक में हमने वेदना खंड का कृति अनुयोग द्वार देखा था, अब यहाँ वेदना खंड का वेदना अनुयोग द्वार चलेगा। ये जो हमने देखा था कि 12 अंग उसमें जो दृष्टिवाद नाम का अंग है, 12वां अंग उसका नाम है दृष्टिवाद अंग। उसमें 5 अधिकार है, उसमें से जो 14 पूर्व कहे जाते हैं, उसमें से जो दूसरा अग्रहणी पूर्व है उसमें एक एक पूर्व में अनेक वस्तु होती है, तो उसमें जो 5वीं वस्तु चयन लब्धि उसका नाम है अग्रहणी पूर्व के। उसमें 14 वस्तुओं में से 5वीं चयन लब्धि नाम की वस्तु है, और वो चयन लब्धि में 20 प्रावृत है, उसके अधिकार है। उसमें से जो चौथा अधिकार है उसका नाम है महाकर्म प्रकृति प्रावृत। ये महाकर्म प्रकृति प्रावृत में 24 संयोग द्वारा है, उसका अधिकार कहते हैं। उसमें से पहला है कृति और दूसरा वेदना, ये दोनों मिलकर यहाँ वेदना खंड बताया है, जो हमारा यहाँ वेदना खंड है। जैसे पहला हमारा खंड 5 छठखंडागम नाम है ना, 6 खंड। पहले खंड का नाम था जीवस्थान, तो उसमें से 6 पुस्तकें हो गई अपने, हाँ 6 पुस्तकें हुई। फिर दूसरा खंड का नाम है खुद्दाबंध क्षुद्रबंधक, तो ये 7वीं पुस्तक हुई। फिर बंध विचय स्वामित्व वो 8वीं पुस्तक हुई। अब ये कृति अनुयोग द्वार वाली, यानी वहां तो 3 खंड हो गए, ये चौथा खंड वेदना खंड, उसमें से 9वीं और 10वीं पुस्तक है। हाँ, फिर बाद में वो अभी ये जो 24 अनुयोग द्वार देखे ना, उसमें अभी हमने जो 24 अनुयोग द्वार किसके महाकर्म प्रकृति के, महाकर्म प्रकृति प्रावृत के 24 अनुयोग द्वार में से पहले 2 अनुयोग द्वार का नाम है वो वेदना खंड, यानी वो चौथा खंड हुआ। उसके बाद वो कर्म स्पर्श कर्म प्रकृति और अन्य जो बातें कुछ है उसमें से, तो ये सब मिलकर आगे की बात करेंगे, वो तो हम आगे की पुस्तकों में देखेंगे। अभी तक तो ये हमारा विषय यहाँ का वेदना का चल रहा है। ये कल आप थी कि सुबह नहीं थे, वेदना का अर्थ होते कर्म, कर्म प्रकृति को वेदना कहेंगे, या उसके निमित्त से जीव के जो भाव होते उसको भी वेदना कहेंगे, क्योंकि जीव में जो वेदन होता है वो कर्मों के उदय में जीव के जो भाव है उसको भी वेदना कहेंगे। अब इसकी अलग अलग बातें बताए रहे उसमें, देखो कोई भी वस्तु जानते हैं तो उसमें उसको नए और निक्षेपों से जाना जाता है। निक्षेप क्या है, तो हमारे जो कोई पदार्थ है उसमें वो रखे जाते हैं लौकिक व्यवहार के लिए भी। हमें बच्ची की बात बताना है, कोई चीज बताना है, तो उस चीज का कोई नाम रखते हैं ना, यह नाम निक्षेप,
क्षेपण करना।
हाँ, निक्षेप यानी रखना, क्षेपण करना, हम कहते हैं निक्षेप रखना, तो हमने नाम रखा तो उसको नाम निक्षेप कहते हैं। अब एक चीज में अन्य चीज की स्थापना करना, जैसे मंदिर जी में देरासर में मूर्ति है, और उसमें क्या, वो तो संगमरमर के पत्थर है, वो उसमें क्या किया, भगवान की स्थापना की, यानी ये वह है ऐसे हमने वहां हमने बुद्धि में ले लिया। तो उसमें उस पदार्थ जैसा हम उसमें व्यवहार करते हैं उसको कहेंगे स्थापना निक्षेप। तीसरा है द्रव्य निक्षेप, वही द्रव्य परंतु उसके भूत और भविष्य की पर्यायों को वहाँ उपचार करना, यह है द्रव्य निक्षेप। जैसे हम कहते हैं श्रेणिक राजा, वो तो पूर्वभव में हुआ था, अभी भी तो नारकी है फिर भी उसको श्रेणिक राजा कह रहे, और वो हमारे भविष्य के पहले तीर्थंकर है ऐसा कहेंगे, पर तीर्थंकर तो आगामी भव में हो जाएगा, अभी इतने साल बाकी है, तो उनमें अभी उम्र जो उपचार कर रहे वर्तमान में तीर्थंकर का उपचार कर, तीर्थंकर का ऐसी पूजा नहीं करते हैं पर उसको कह सकते हैं, ये कहने के लिए है। तो ये होता है निक्षेप, यानी पूर्व और पश्चात वाली पर्याय का वर्तमान में उस द्रव्य तो वही का वही है इसलिए उसको वो कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना तीर्थंकर का जन्म हुआ, जन्मते समय कोई तीर्थंकर नहीं होता है, तीर्थंकर तो जब वो केवल ज्ञान हो जाएंगे तब उनको तीर्थंकर कहेंगे, जब वो तीर्थंकर प्रकृति का उदय होगा। पर जो तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला जीव है जिसने बांधी है और अभी इसी भव में मोक्ष जाने वाला है तो हम कहेंगे ये तीर्थंकर का जन्म हुआ, यो गर्भ में आए जन्म हुआ, तीर्थंकर ने दीक्षा ली। अभी तीर्थंकर तो केवल ज्ञानी है, वो कहाँ से दीक्षा लेगी, पर ये उपचार होता है, इसको कहते हैं ये निक्षेप हो सकता है इस पद्धति का। और उस निक्षेप को जिस नए से हम कहेंगे या जानेंगे उसको नए कहेंगे, नए तो ज्ञान की पर्याय है और निक्षेप तो वस्तु में रखा जाता है, गेय में जो वस्तु जो हम जानते हैं उसमें जो हमको जो इसका नाम रखा उसमें जो स्थापना एक वस्तु में दूसरे वस्तु की स्थापना की तो उसको भूत या भविष्य की पर्याय रूप से वर्तमान में उसका उपचार किया, वो द्रव्य निक्षेप हुआ। भाव निक्षेप में वो उस पर्याय रूप से परिणत द्रव्य लेना है, यानी तभी उसको हम भाव निक्षेप से उसको कहेंगे कि वर्तमान में कर रहा है। जैसे राजा अभी पूजा कर रहा है तो उसको हम पूजक कहेंगे, पुजारी कहेंगे, वर्तमान में वो क्या कर रहा है। तो इस तरह से ये निक्षेप होते हैं अलग अलग। अब ये निक्षेपों को जानने वाले जो है उसको नए कहेंगे। तो वो कौन सा नए कौन से निक्षेपों को एक्सेप्ट करता है वो बात अभी चल रही थी अपने। देखो पेज नंबर 9 पर बात हुई थी। अब नए कौन कौन से है, अच्छा ये इतनी पूछा था यहाँ पर कि कौन सा नए किन वेदनाओं को स्वीकार करता है, क्योंकि वेदना में हमने वेदना में नाम वेदना, फिर स्थापना वेदना, द्रव्य वेदना और भाव वेदना, जो निक्षेप है वो ऐसे हमने पहले नए निक्षेप के प्रकरण हो चुका अपना तो उसमें वो बातें हमने देखी थी। अब हमको नए कौन कौन से होते हैं तो 7 नए बताए जाते हैं। एक है नैगम, नैगम नए ने वो तो दोनों को स्वीकार करता है पूर्व पश्चिम, तो दो को स्वीकार न एकम वो नैगम होता है। दूसरी बात है संग्रह ने सबको इकट्ठा, कोई समान धर्म की अपेक्षा सबको इकट्ठा कहना उसको कहेंगे संग्रह ने। जैसे हम कहने ये जीव है तो सभी जीवों में जीवत्व समानता है, चैतन्य की समानता है तो सभी जीवों को जीव ऐसा कहेंगे, वो संग्रह नहीं हुआ। दूसरा होता है व्यवहार नय, अभी जीव में ही भेद किए हमने, ये संसारी जीव और ये मुक्त जीव, ये व्यवहार हुआ। अब संसारी जीवों में ये एकेंद्रिय ये द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुर्य पंचेंद्रिय ये भेद किए वो व्यवहार हुआ, तो जितने भेद करते जाओ वो सारे व्यवहार नय कहलाएंगे। सत कहने से सारे द्रव्य आ गए, यानी 6 द्रव्यों को सत एक नाम से हम कहेंगे तो वो हो गया संग्रह नय। अब उसमें ये जीव द्रव्य है ये पुद्गल द्रव्य है धर्म अधर्म आकाश काल ये हम 6 विभाग करेंगे भेद करेंगे वो हो जाएगा व्यवहार नय। अब जीव कहेंगे तो जीव ये 6 द्रव्यों का एक भेद भी हो सकता है उसको व्यवहार कहेंगे, और सभी जीवों को इकट्ठा लिया तो वो संग्रह भी कहेंगे। यानी हमारी अभिप्राय क्या है उस पर वो नय कौन सा है वो निर्भर होता है। तो ये हमने अभी तक देखा नैगम, फिर संग्रह नय, एक व्यवहार नय ने भेद करके बताने वाला। एक होता है रुजु सूत्र नय, रुजु सूत्र नय का अर्थ होता है वर्तमान पर्याय को विषय करता है, द्रव्य की जो पर्याय है उसको विषय करने वाला है उसको कहेंगे रुजु सूत्र नय। अब वो जो ये उसको बताने वाले जो जो सूत्र ने तो पर्याय का विषय किया है वो पर्याय आर्थिक नहीं कहते हैं, पर्याय को विषय करने वाला, तो पर्याय को विषय करने वाला जिन शब्दों में बताता है तो उन शब्दों में फिर थोड़े जिसको स्पेसिफिक हो जाता है आगे के नए, वो सारे जो वर्तमान पर्याय को ही विषय करने वाले हैं परंतु उसमें शब्द न एक होता है तो शब्द नय में वो उसमें कोई व्याकरण का दोष नहीं होने चाहिए। समान लिंग वाले शब्दों को वो स्वीकार करता है, समान वचन यानी एक वचन द्विवचन समान वचनों को स्वीकार करता है, इस तरह से उसमें बातें होती, वो है शब्द नय। फिर एक होता है समभिरूढ़ नय। समभिरूढ़ नय तो जो स्वीकार किया है शब्द नय ने, हाँ उसमें भी और थोड़ी स्पेसिफिकली बात करते हैं, वो समभिरूढ़ नय होता है। और एक होता है एवं भूत नय। पेज नंबर 10। एवं भूत नय ने बस जैसे किसी एक चीज के लिए अनेक नाम हो सकते हैं, जैसे कृष्ण के लिए गिरिधर भी कहते हैं, मुरलीधर भी कहेंगे और मुरारी भी कहेंगे, पर उस समय जो कार्य कर रहा है उस अपेक्षा से वो नाम को स्वीकार करता है। यानी एक ही चीज के अनेक नाम होने पर भी उस समय अगर वो उस पर्याय रूप से परिणत है उसके कारण जो नाम, जैसे कृष्ण को गिरिधर क्यों कहते हैं, उसने वो पर्वत उठाया था उस समय उसको गिरिधर कह सकते हैं, जिस समय वो मुरली बजा रहा है उस समय उसको मुरलीधर कह सकते हैं, अन्यथा नहीं। ये वो लास्ट वाला एवं भूत का कार्य है। इस तरह एक नयों के जो 7 भेद है। अब यहाँ ये बात हो रही है अपनी, कौन सा नय कौन से निक्षेप को विषय करता है। तो ये 2 नंबर का सूत्र पहले ऊपर प्राकृत में पढ़ेंगे फिर नीचे। नैगम व्यवहार संग्रहा सव्वाओ। नैगम व्यवहार और संग्रह नय सब वेदनाओं को स्वीकार करते हैं, सब इन्हें सभी निक्षेपों को स्वीकार करते हैं। ये जो निक्षेप हमने 4 देखे ना, नाम स्थापना द्रव्य और भाव, वो सबको स्वीकार करते हैं। स्वीकार करते हैं इसकी पूर्व सूत्र से अनुवृत्ति करानी चाहिए। 1 नंबर का सूत्र में क्या पूछा गया था, पूछा नहीं है वो एक्चुअली एक प्रश्न भी नहीं कह सकते उसको, क्योंकि उसको चालना कहा था उसको, यानी उस पर हमारा विचार चल रहा है। क्योंकि कौन सा नय किन किन वेदनाओं को स्वीकार करता है ऐसा लिखा था ना, तो अब यहाँ सूत्र में क्या बताया, नेगम व्यवहार संग्रह सव्वाओ, यानी नेगम व्यवहार संग्रह सर्व को, तो सर्व को इतना ही कह दिया, तो सर्व को इतना कह दिया, परंतु वो सर्व को स्वीकार करता है, ये स्वीकार करता है ये शब्द इस सूत्र में नहीं डाला है, उसकी कंटिन्यूटी उसको अनुवृत्ति कहते हैं। अनुवृत्ति अनु यानी टू फॉलो, यानी पहले सूत्र में वो शब्द आया है वो यहाँ पर भी है ऐसा हम समझ लेते, क्योंकि सूत्र उसी को कहते हैं जिसमें कम से कम अक्षरों में, शब्द भी नहीं, कम से कम अक्षरों में बताया जाता है उसको सूत्र कहते हैं। अब पहले सूत्र में वो शब्द आया स्वीकार करते हैं, फिर यहाँ रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर रिपीटेशन होता है वो सूत्र में दोष माना जाता है। सूत्र उनको कहते हैं जो मिनिमम पॉसिबल अक्षरों में मैक्सिमम पॉसिबल जो अर्थ बताया जाता है उसको सूत्र कहते हैं। जैसे तत्वार सूत्र है उसमें भी ऐसे आता है ना, कुछ कुछ सूत्रों की बात आगे आगे कंटिन्यूएशन में वो वहाँ लिया जाता है, क्योंकि उक्त पद की, पद यानी वो शब्द, उक्त पद की अनुवृत्ति किए बिना सूत्र का अर्थ नहीं बन सकता, क्योंकि अधूरा वाक्य लगता है ना उसमें स्वीकार करता है। हिंदी में जब अर्थ किया है वो जोड़कर वो लिखा है, मूल प्राकृत में वो इच्छति नाम का शब्द नहीं जो पहले सूत्र में था, तो उसको यहाँ कंटिन्यूएशन में ले लिया। अब ये जो 4 निक्षेप है, नाम स्थापना द्रव्य और भाव, जिसको हमने नाम वेदना स्थापना वेदना द्रव्य वेदना और भाव वेदना कहा, तो ये प्रश्न पूछते हैं नाम निक्षेप द्रव्यार्थिक नय में कैसे संभव है, क्योंकि केवल नाम है और यहाँ द्रव्यार्थिक यानी द्रव्य को विषय करने वाला वो द्रव्यार्थिक नय है और पर्याय को विषय करने वाला वो पर्यायार्थिक नय। मूल भेद 2 होते हैं, तो ये नैगम व्यवहार संग्रह ये द्रव्यार्थिक नय है, और ऋजु सूत्र शब्द समभिरूढ़ और एवं भूत जो हम आगे की बात है 4 वो सारे पर्यायार्थिक नय है। तो ये प्रश्न पूछते हैं ये द्रव्यार्थिक नय कैसे कह सकते इसको, उसका समाधान, चूंकि एक ही द्रव्य में रहने वाले नामों की, उसको नाम दिया ना संज्ञा दी, जिसने अतीत अनागत वो वर्तमान पर्यायों में संचार करने की अपेक्षा द्रव्य व्यपदेश को प्राप्त किया है। देखो हमने किसी ये जीव द्रव्य, जीव का नाम क्या, जीव ये नाम हुआ उसका, तो वो द्रव्य किसको बताते हैं? वो जो भूतकाल में भी था, वर्तमान में भी है, भविष्य में भी है। तो क्या कहते उन्होंने, जिन्होंने अतीत अनागत व वर्तमान पर्यायों में संचार करने की अपेक्षा, द्रव्य वही का वही है तो वो कहते वो सभी पर्यायों में संचार कर रहा है, यानी द्रव्य उस पर्याय को प्राप्त होता रहता है। तो इसलिए द्रव्य उसको व्यपदेश को प्राप्त होता है, उसको द्रव्य नाम पाया जाता है। और जो पर्याय की प्रधानता से रहित है ऐसे तद्भव सामान्य में, ये द्रव्य क्या है तो पर्यायों को वहां प्रधानता नहीं दी है, गौण कर दिया है। द्रव्य में तो पर्याय है ही, क्योंकि द्रव्य को हम पर्यायों की तरफ से अगर कहना है द्रव्य किसको कहेंगे तो गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, परंतु अनादि अनंत जो है ना सभी पर्यायों का समूह, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य की पर्याय सुनिश्चित रहती है अनादि काल से अनंत काल तक। उस पर्याय जो हम सोना है हमारे 10 पीढ़ी से चल रहा है, तो 10 पीढ़ी से उसने कभी वो उसके बंगड़ी थे, कभी कंगन थे, कभी हार था, कभी मुकुट था, तो वो सभी अवस्थाओं रूप से तो सोना विद्यमान है। तो द्रव्य को हम पर्यायों की तरफ से देखेंगे तो अनादि अनंत पर्यायों का समूह, उसको हम द्रव्य कह सकते हैं। एक बात तो यहाँ कहते हैं उस पर्यायों की प्रधानता से रहित, यानी उसको भी गौण कर दो। तो पर्यायों को गौण कर दो क्या, वो सामान्य 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 वही जो जिससे हमने उदाहरण देखा सोना 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 सोना, उस रूप से तो वही का वही है, उसको सामान्य कहेंगे। तो तद्भव सामान्य में यानी वो सभी पर्यायों में व्याप्त होकर रहने वाला वही का वही द्रव्य है, उसको तद्भव सामान्य कहा। यानी एक ही द्रव्य अपने सभी पर्यायों में सामान्य रूप से पाया जाता है, तो उसकी प्रवृत्ति देखी जाती है। अब दूसरी क्या है, जाति गुण व क्रिया में, व क्रिया में लिखा है, वो क्रिया में करो। जाति गुण व क्रिया में वर्तमान नामों की, जिसने व्यक्ति विशेषों में अनुवृत्ति होने से द्रव्य व्यपदेश को प्राप्त हुआ है, और जो व्यक्ति भाव की, पूरा वाक्य पढ़ती हूँ क्योंकि एक वाक्य है, और जो व्यक्ति भाव की प्रधानता से रहित है ऐसे सादृश्य सामान्य में प्रवृत्ति देखी जाती है। क्या कहना चाहते हैं, ये नाम क्या है, जैसे अभी पहले वो वही का वही द्रव्य है, वहाँ सभी पर्यायों में वो पाया जाता है, परंतु पर्यायों को हमने गौण कर दिया तो उसको तद्भव सामान्य कहा। अब यहाँ किसकी बात है, अनेक द्रव्य है, अनेक द्रव्य है, जैसे अभी हम कहेंगे जीव की बात करेंगे या मानव की बात ले ना, मनुष्य है, तो मनुष्य अलग अलग कास्ट के हो गए, अलग अलग टाइप के हो गए, अलग अलग नेशन के हो गए, परंतु सब में मनुष्य मनुष्य मनुष्यपना समान है, तो उसको कहेंगे सादृश्य सामान्य, यानी उनकी जाति एक है। जैसे हम कहेंगे एकेंद्रीय जीव, तो एकेंद्रियों में डिफरेंस तो है, कोई पृथ्वी का एक है, कोई जल का एक है, कोई वायु का एक है, पर एकेंद्रीय की अपेक्षा उनमें सब में जाति की समानता है, तो ये उसको कहेंगे सादृश्य सामान्य, यानी सबको मिलकर हम एकेंद्रीय जीव ऐसा कह सकते हैं। हाँ, एक जाति की, जैसे द्रव्यों की बात चल रही है, जैसे हम कहेंगे पुद्गल, तो सभी पुद्गलों की जाति एक ही है, भले स्कंध अलग अलग टाइप के, कोई शरीर रूप से, कोई कर्म रूप से, कोई अभी कुर्सी रूप से है, कोई वस्त्र रूप से है, कोई कागज रूप से है, परंतु सबकी जाति क्या है, पुद्गल, ये उनमें सादृश्य सामान्य है। देखो अभी ये पूरा वाक्य फिर पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो नाम दिया जाता है, देखो पुद्गल हमने नाम दिया तो पहले क्या कहा, तद्भव सामान्य, यानी वो जो पुद्गल द्रव्य है वो अपनी सभी पर्यायों में वर्तमान रहते हैं, पर्यायों को गौण करके उसको क्या कहेंगे, पुद्गल, वो अनादि अनंत पुद्गल ही है, भले वो अलग अलग पर्याय रूप से परिणमता रहेगा, वो एक बात हो गई, यानी वो पुद्गल नाम बराबर है। यानी नाम निक्षेप को क्यों ये स्वीकार कर रहे द्रव्यार्थिक ने, उसकी बात है, यानी नाम के द्वारा हम द्रव्य को ही सूचित कर रहे हैं, तो द्रव्य की एक अपेक्षा क्या है, सभी पर्यायों में पाया जाता है, पर्यायों को गौण किया। दूसरी अपेक्षा क्या है, उसको पुद्गल कहा, तो वो परमाणु भी पुद्गल है, कोई स्कंध भी पुद्गल है, अभी स्कंधों के इतने भेद है, वो सभी पुद्गल है, जाति की अपेक्षा समानता है, इसलिए वो नाम जो है वो द्रव्य को बताने वाला है, इसलिए उसको द्रव्यार्थिक ने स्वीकार करता है, बस इतनी बात चल रही। प्रश्न क्या था, नाम निक्षेप को द्रव्यार्थिक ने, द्रव्यार्थिक ने किसको स्वीकार करता है, द्रव्य को, और ये नाम क्या करता है, द्रव्य को ही बताया जाता है, अब ये वाक्य पूरा पहले से फिर दोबारा पढ़ते, देखो शंका से फिर पढ़ते, नाम निक्षेप द्रव्यार्थिक नय में कैसे संभव है, यानी द्रव्यार्थिक नय नाम निक्षेप को क्यों स्वीकार करता है, वो तो द्रव्य को स्वीकार करना चाहिए। समाधान, चूंकि यानी एक कारण की एक ही द्रव्य में रहने वाले नामों की यानी संज्ञा शब्दों की जिसने अतीत अनागत व वर्तमान पर्याय में संचार करने की अपेक्षा द्रव्य व्यपदेश को प्राप्त किया है, यानी सभी पर्याय में पाया जाता है इसलिए उसको द्रव्य कहते हैं, और जो पर्याय की प्रधानता से रहित है ऐसे तद्भव सामान्य में प्रवृत्ति देखी जाती है। किसकी? नाम की। ये द्रव्य को जो हमने नाम दिया जीव द्रव्य नाम दिया तो सभी पर्यायों में वो पाया जाता है और पर्यायों को गौण कर दिया, प्रधानता से रहते ने गौण कर दिया तो उसको तद्भव सामान्य कहा, यानी एक ही द्रव्य त्रिकाल में वही का वही रहता है उसको हम वही द्रव्य उसको नाम लेकर कह सकते हैं, यानी वो नाम उस द्रव्य को बताने वाला है, वो एक बात हुई। अब दूसरी क्या बात होती है, अनेकों में जो पाया जाता है जिसको सादृश्य सामान्य कहते हैं, तो जाति की अपेक्षा समानता है, जैसे सभी एक इंद्रिय जाति वाले हैं, गुणों की अपेक्षा कहाँ समान होते हैं, ये सब चेतन है ऐसा हम कहेंगे, क्रिया में वो क्रिया सबकी जो पाई जाती है समान उसको हम क्रिया में ले सकते हैं, उसमें वर्तमान नामों की यानी उसमें जो विद्यमान जो नाम है उसकी जिसने व्यक्ति विशेषों में अनुवृत्ति होने से द्रव्य उपदेश को प्राप्त हुआ है। व्यक्ति विशेष यानी सिंगल सिंगल अलग हर एक की एक एक की एंटिटी जुदी जुदी है, आप भी जीव द्रव्य है, ये भी जीव द्रव्य है, वो भी जीव द्रव्य है, वो एक इंद्रिय भी जीव द्रव्य है, अभी कीड़े मकोड़े सब जीव द्रव्य है, परंतु उसमें क्या है जाति सभी की क्या है जीव जाति है, तो जीवत्व की अपेक्षा सब में समानता है। तो व्यक्ति विशेषों में अनुवृत्ति, अनुवृत्ति यानी कंटिन्यूटी, यानी ये भी जीव है, ये भी जीव है, ये भी प्रत्येक व्यक्ति की अपेक्षा एक एक जुदा जुदा जीव है परंतु सब में सामान्यता कॉमन जिसको कहेंगे, अनुवृत्ति यानी कंटिन्यूटी द्रव्य व्यपदेश को प्राप्त किया है, यानी सबको हम द्रव्य यानी यहाँ तो जीव कह सकते हैं या द्रव्य कह सकते हैं, और जो व्यक्ति भाव की प्रधानता से रहित है सभी व्यक्तियों में पाया जाता है परंतु वहां व्यक्ति की मुख्यता नहीं है। जब हमने कहा सभी जीव है तो प्रत्येक जीव जुदा जुदा है और जीवत्व की अपेक्षा सब समान है परंतु वहां व्यक्ति विशेष की मुख्यता से वो रहित है। वो महावीर भगवान है कि आदिनाथ भगवान है, ये सिद्ध है कि अरिहंत है कि निगोध है कि मनुष्य है, ये व्यक्ति विशेष को गौण करके सभी जीव 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 है ऐसा हम उसको कह सकते हैं। ये नाम को क्यों यहाँ स्वीकार कर रहा है उसकी बात चल रही है, इसलिए कहते जो व्यक्ति भाव की प्रधानता से रहित है ऐसे सादृश्य सामान्य में प्रवृत्ति देखी जाती है। नाम की प्रवृत्ति किस में होती है? तो द्रव्य को बताने वाला जो नाम है वो द्रव्य को ही स्वीकार कर रहा है इसलिए वो द्रव्यार्थिक नय का विषय हो सकता है, इतना कहना उनको। तथा सादृश्य सामान्यात्मक नाम के बिना शब्द व्यवहार भी घटित नहीं होता, यानी जो हमने सभी में समानता है तो हमने सभी को जीव कह दिया, जैसे एक सभी एक इंद्रिय तो सभी को एक इंद्रिय कह दिया, ऐसा कोई नाम अगर नहीं रखेंगे तो बताएंगे कैसे? ये जो व्यवहार होता है लौकिक में भी हर चीज का कुछ नाम रखते हैं तभी तो हम, नहीं तो कहेंगे कैसे? कोई भी चीज कहने हम कोई भी वाक्य निकालो, तो राम ने आम खाया हमारे व्याकरण में हमेशा कहते थे ना, तो किसी व्यक्ति विशेष को बताएं तो राम नाम लिया, क्या खाया क्या किया, तो हर एक शब्द के पीछे उसका नाम देकर, कोई क्रियापद हो कोई वस्तु हो उसको नाम तो दिया ही जाता है, उसके बिना अर्थ ही भाषित नहीं होता है। यही कह रहे कि सादृश्य सामान्यात्मक नाम के बिना, यानी कोई भी नाम अगर वस्तु का नहीं रखेंगे तो शब्द व्यवहार भी घटित नहीं होता, यानी फिर शब्द नए वगैरह आगे के जो नए है वो घटित ही नहीं होंगे। अतः नाम निक्षेप द्रव्यार्थिक नए में संभव है, ये उसको द्रव्य को विषय करने वाले नए नाम निक्षेप को क्यों स्वीकार करते हैं ये उसका उत्तर हुआ। अब ऊपर क्या बताया था, नैगम व्यवहार और संग्रह ये तीनों द्रव्यार्थिक नए हैं, वो सभी चारों निक्षेपों को स्वीकार करते हैं, नाम स्थापना द्रव्य भाव। अब दूसरा प्रश्न है कि द्रव्यार्थिक नए में स्थापना निक्षेप कैसे संभव है? स्थापना निक्षेप में क्या होता है, एक वस्तु में किसी अन्य वस्तु का संकल्प करना, उसको हम स्थापना निक्षेप कहते हैं। तो ये कहते उसको द्रव्यातिक ने क्यों कह रहे हो? उसका समाधान, एक तो स्थापना में प्रतिनिधीय मान की प्रतिनिधि के साथ एकता का निश्चय होता है। क्या कहते हैं? प्रतिनिधि है? प्रतिनिधि का अर्थ क्या होता है? अभी यहाँ हमने संगमरमर की मूर्ति है, वो प्रति उसमें किसका किसकी स्थापना की? अरिहंत भगवान की, महावीर भगवान की स्थापना की। तो कहते हैं कि वो प्रतिनिधि है जिसमें स्थापना की है, वो प्रतिनिधि हुआ। किनकी स्थापना की? महावीर भगवान की। वो प्रतिनिधि मान हुआ तो उनकी एकता का निश्चय होता है, क्योंकि वे वही है ऐसा हम संकल्प करते हैं। निश्चय बराबर करो, निश्चय च हुआ है, वो निश्चय करो, वो हमने किया था लास्ट टाइम, बताना रह गया। और दूसरे ने दूसरी बात, पहली बात एक तो बताया, दूसरी बात क्या है? सद्भाव स्थापना व असद्भाव स्थापना के भेद रूप से सब पदार्थों में अन्वय देखा जाता है। ये क्या होता है? ये जो स्थापना निक्षेप के दो भेद होते हैं, एक सद्भाव स्थापना और एक असद्भाव स्थापना। सद्भाव स्थापना का दूसरा नाम है तदाकार स्थापना। जैसे हम जो भगवान की मूर्ति बनाते हैं, तो जैसे मनुष्य जो मुनिराज ही भगवान बने हैं, तो जो मनुष्याकार ही उसको बनाते हैं, तो जो भगवान के आकार की उसी आकार की बनाना उसको कहेंगे सद्भाव, और कोई भी अन्य आकार लेना उसको कहेंगे असद्भाव। हाँ, कहीं कहीं लौंग करके हम कहेंगे स्थापना की, फिर वहाँ पूजा की जाती है। कहीं कहीं अन्य मतियों में भी देखो, कोई पत्थर रखा, वो कुछ डाला उसमें, ये हमारे भगवान है, उन्होंने क्या किया, वो तदाकार की नहीं बात होती। पहले जमाने में ऐसा भी था ना, शादी के मुहूर्त में हुआ तो कोई भाई तो लड़ाई में चला गया, तो उसके बदले वहाँ तलवार रखी जाती थी। अब कोई विधान है, कोई है, कोई स्त्री नहीं आ सकती, तो सुपारी रखे जाते हैं उसके बदले में। इसको कहेंगे अतदाकार स्थापना। अभी जो चेस, हाँ, शतरंज के आपने तो देखा है, शतरंज जो होता है खेल, तो उसमें हाथी किसको कहेंगे? उसकी कोई अलग सी रचना है। ऊंट, ये ऊंट जैसा आकार नहीं, उसमें राजा हो, वजीर हो, जो कोई प्यादे है, तो उसमें कुछ अलग शेप में उनकी स्थापना की जाती है। इसको कहते सद्भाव और असद्भाव के स्थापना के भेद रूप से सब पदार्थों में अन्वय देखा जाता है। यानी कोई भी पदार्थ, किसी भी पदार्थ में उसकी स्थापना हो सकती है, उसको वैसा आकार होना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। हमने ये कहते ये हमारा ज्ञानावरण कर्म है, दर्शनावरण कर्म है, मोहनीय कर्म है, कुछ भी कह सकते हैं ना। बचपन में क्या होता था, छोटे बचपन में तो ऐसे खेल खेलते थे, ये हमारा राजा है, ये हमारा ये है, या कभी कभी वो कागज के चित्र बनाते थे, ये राजा ये रानी, और उसके साथ खेल खेलते थे, वैसा है यहाँ पर। इसलिए द्रव्यार्थिक नय में स्थापना निक्षेप संभव है, यानी वो एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य में संकल्प करता है, इसलिए वो द्रव्य को ही विषय करता है, इसलिए वो भी द्रव्यार्थिक नय का वहाँ भी स्थापना निक्षेप उसका विषय है। अब आगे आते 11 पेज पर, ये जो द्रव्य निक्षेप होता है उसके दो भेद हमने देखे थे, आगम द्रव्य निक्षेप और नो आगम द्रव्य। आगम यानी हमारे जो ग्रंथ है, जो भगवान ने बताए हुए शास्त्र, जिसको कहेंगे उसको आगम कहेंगे। आगम द्रव्य निक्षेप में क्या कहेंगे? तो देखो, जिस विषय का हम ये निक्षेप लगा रहे हैं, यहाँ वेदना यानी कर्मों की बात चल रही है, वेदना यानी कर्म, यानी उस संबंधी जो कोई आगम है, हमारे कर्म संबंधी जो आगम है उसको जानने वाला जो जीव है, परंतु उसका उपयोग अभी उसमें नहीं है, उसका उपयोग अन्यत्र है, शास्त्र में उसका उपयोग नहीं है, तो उस जीव को कहेंगे, उस जीव को हमने वेदना कह दिया। हाँ, वो कहे कौन सा? आगम द्रव्य निक्षेप से, तो उसको क्या कहेंगे हम? आगम वेदना द्रव्य निक्षेप, क्योंकि वेदना संबंधी अनुयोग का जानकारी जीव है, उस जीव को ही आगम से वेदना कह दिया, उस जीव को वेदना कह दिया, क्योंकि वो जान रहा है परंतु अभी वर्तमान में उपयोग नहीं है। क्योंकि द्रव्य निक्षेप किसको विषय करता है? भूत या भविष्य को विषय करता है, पर्याय को, वर्तमानवत उपचार करता है। वो जीव को लिया, उसने जान तो लिया है परंतु वर्तमान में उसका उपयोग उसमें नहीं है। नो आगम में क्या लेना है? नहीं जानने वाला जीव भी ले सकते हैं, और नहीं जानने वाले अन्य चीज भी ले सकते हैं। हाँ, तो उसका ज्ञायक शरीर यानी जानने वाले जीव के शरीर को भी हम वेदना कहेंगे, उसको द्रव्य निक्षेप से, नो आगम द्रव्य निक्षेप से उसको भी वेदना कहेंगे। और ज्ञायक शरीर में वो भूतकाल का शरीर, वर्तमान का, भविष्य काल का, वो बातें होती हैं। एक होता है भावी, यानी उसी जीव को जो भविष्य में जानेगा, वर्तमान में नहीं जान रहा है, उसको भी हम नो आगम द्रव्य वेदना कहेंगे। अब तीसरी बात क्या है, जो जीव भी नहीं है, जो जीव का शरीर भी नहीं है, ऐसे अन्य क्या हो सकता है, कर्म भी हो सकता है। हाँ, तो वो भी तो पर्याय, वही उसी द्रव्य की पर्याय है, इसलिए वो भी द्रव्यार्थिक नय का विषय है। बस ये कहना चाहते हैं कि आगम द्रव्य निक्षेप व नो आगम द्रव्य निक्षेप ये द्रव्यार्थिक नय के विषय है, यह बात सुगम है। सुगम है क्योंकि उसी द्रव्य की वो पर्याय है, इसलिए वो भी द्रव्य की ही बात है, ये नक्की हो जाती है। शंका, वर्तमान काल से परिच्छिन्न, परिच्छिन्न ने परिच्छित्य ने ज्ञान, परिच्छिन्न ने जाना गया, वो छिन्न भिन्न ने कोई भेदना नहीं उसको, तो वर्तमान काल से जाना गया भाव निक्षेप द्रव्यार्थिक नय का विषय कैसे है, क्योंकि हमने क्या देखा था, भाव निक्षेप किसको कहते हैं, उस पर्याय से परिणत द्रव्य की बात है, तो वो द्रव्यार्थिक नय का विषय कैसे है, तो वर्तमान पर्याय को विषय कर रहा है वो पर्यायार्थिक, कहो उसको द्रव्य क्यों कह रहे हैं, ये उनका सवाल है, उसका समाधान नहीं, क्योंकि व्यंजन पर्याय के अवस्थान मात्र वर्तमान काल से उपलक्षित, उपलक्षित यानी उससे जाना गया या उसको लक्ष्य किया हुआ या लक्षण बनाया हुआ द्रव्य, द्रव्यार्थिक नय का विषय है। क्या कहना चाहते हैं, व्यंजन पर्याय का अवस्थान मात्र वर्तमान काल से उपलक्षित द्रव्य, क्योंकि वो सारे जो द्रव्यार्थ पर्याय के विषय है, भाव निक्षेप वगैरह पर्याय पर जाना जाता है, वर्तमान पर्याय को विषय करता है, परंतु कौन सी पर्याय ली, जो व्यंजन पर्याय, जो लंबे काल तक, जैसे ये मनुष्य पर्याय है, ये एक केंद्रीय जीव है, कुछ काल तक वो एक केंद्रीय जीवपना उसमें बना रहता है, मनुष्य कायम के लिए वो जीव नहीं है, मनुष्य नहीं है, परंतु उसकी व्यंजन पर्याय क्या चल रही है, मनुष्य पर्याय चल रही है, तो ये उसको हम द्रव्य को उस नाम से हम जानते हैं ना, क्योंकि द्रव्य तो पर्याय के द्वारा ही जाना जाता है, तो इसलिए कहते हैं व्यंजन पर्याय के अवस्थान, अवस्थान है उसे रहना, अवस्थान मात्र वर्तमान काल से उपलक्षित द्रव्य, द्रव्यार्थिक नय का विषय है, ऐसा मानने में कोई विरोध नहीं है। प्रश्न ये हुए थे कि नैगम नय, व्यवहार नय और संग्रह नय, ये तीनों ही द्रव्यार्थिक नय है, द्रव्य को विषय करते हैं, तो नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप और ये आगम नो आगम तो आसान था, और ये भाव निक्षेप, उसके विषय कैसे होते, उसने सभी विषयों निक्षेपों को स्वीकार किया है, ये बात यहाँ हो रही थी। अब आगे बढ़ते हैं, नैगम व्यवहार संग्रह की बात हुई, चौथा नय है रुजुसूत्र नय, रुजुसूत्र नय तो वर्तमान को विषय करने वाला होता है, रुजुसूत्र नय स्थापना निक्षेप को स्वीकार नहीं करता, ऊपर ऊपर का रह गया प्राकृत में, उजुसुदो ठवणम नैच्छदि, नीचे उसका अन्य पाठ बताया है फुटनोट में, उजुसुदा, उजुसुदो के बदले उजुसुदा, और दूसरा नैच्छदि के बदले में उजुसुदो ठवण वज्जे, यानी स्थापना वर्जित करके, इस तरह से भी सूत्र आता है, ठवणम नैच्छदि के बदले ठवण वज्जे, यानी स्थापना को छोड़कर रुजुसूत्र ने स्वीकार करता है, यानी नए हमने, सॉरी निक्षेप हमने चार देखे थे, नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप, उसमें से रुजुसूत्र ने जो है वो स्थापना निक्षेप को स्वीकार नहीं करता, ये एक ही द्रव्य की वर्तमान पर्याय लेना है ना, तो वो तो अन्य द्रव्य में अन्य द्रव्य का उपचार वो रुजुसूत्र ने को स्वीकार नहीं है, तो यहाँ नीचे लिखा है रुजुसूत्र ने स्थापना निक्षेप को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि पुरुष के संकल्प वश, पुरुष के ने जीवों के संकल्प किए ना हमने, वहां किसी किस हमने मान लिया कि इसको ये है, ये हमारे महावीर भगवान है, ये हमने संकल्प किया, तो पुरुष के संकल्प वश एक पदार्थ का अन्य पदार्थ रूप से परिणमन नहीं पाया जाता, और यहाँ रुजुसूत्र ने वो परिणमन को ही स्वीकार करता है और वो कोई महावीर भगवान उस रूप से परिणमित नहीं हुए हैं। महावीर भगवान तो अभी सिद्धालय में विराजमान है, परंतु उनकी अरिहंत अवस्था का संकल्प हम इसमें करते हैं। महावीर भगवान अभी उस रूप से नहीं है, वो तो उनके अशरीरी हो गए हैं, वो तो सिद्ध बन चुके हैं, पर उनकी जो अरिहंत अवस्था है, तीर्थंकर अवस्था, वो उनमें हमें स्थापित की है। शंका, तद्भव सामान्य व सादृश्य सामान्य रूप द्रव्य को स्वीकार करने वाला रुजुसूत्र नये द्रव्यार्थी कैसे नहीं है? उन्होंने कहा वो स्थापना निक्षेप को नहीं स्वीकारता, अन्य सभी निक्षेपों को स्वीकार करता है। अब हमने नाम निक्षेप में क्या देखा था, वो द्रव्य जो संज्ञा नाम जो दिया जाता है वो तो सभी पर्यायों में पाया जाता है और सभी समान चीजों में भी वो नाम पाया जाता है। जीव कहने से एक जीव अपने सभी पर्यायों में विद्यमान है और जीव कहने से सभी जीव अलग अलग होने पर भी सभी को एक जीव ऐसे नाम से हम कह सकते हैं, तो उस नाम निक्षेप को ये क्यों स्वीकार करता है, इनका प्रश्न है। क्योंकि हमको प्रश्न अगर नहीं समझ में आता है तो आगे की चर्चा समझ में नहीं आएगी, क्योंकि पहले नाम निक्षेप में द्रव्यार्थिक ने कैसे पूछा गया था तो वहां उन्होंने तद्भव सामान्य और सादृश्य सामान्य की बात की थी। अब यहाँ कहते हैं रुजुसूत्र ने तो पर्याय को विषय करता है, तो यहाँ तद्भव सामान्य और सादृश्य सामान्य की बात कहाँ से आई, तो वो नाम निक्षेप को क्यों स्वीकार करेगा, तो वो द्रव्यार्थिक कैसे नहीं है, ऐसा पूछते हैं। समाधान, नहीं, क्योंकि रुजुसूत्र ने घट पट व स्तंभादि स्वरूप व्यंजन पर्यायों से परिच्छिन्न ऐसे अपने पूर्वापर भावों से रहित वर्तमान मात्र को विषय करता है, अतः उसे द्रव्यार्थिक नय मानने में विरोध है। द्रव्य क्या है, तो पूर्वापर सभी पर्यायों में जो पाया जाता है उसको द्रव्य कह रहे हैं। रुजुसूत्र ने भी द्रव्य को कौन से वर्तमान पर्याय से परिणत द्रव्य को विषय करता है। जैसे यहाँ उदाहरण क्या लिया, घट है, पट है, स्तंभ यानी खंबा है, तो वर्तमान में वो है ना उसके पर्याय, ये नए भूत भविष्य के पर्याय को कंसिडर नहीं कर रहा है, पर वर्तमान में वो कुछ है वो नहीं देना है। रुजुसूत्र ने उसकी बात नहीं करता है, वो पहले क्या था बाद में क्या होगा उसकी बात नहीं, वर्तमान में वो घट है, वर्तमान में पट है, वर्तमान में खंबा है, उसी को वो नाम बता रहा है। क्योंकि नाम भी वर्तमान द्रव्य को बता नहीं है, पट्टी है, पेंसिल है, ये पेन है, ये क्या है, वर्तमान उसके व्यंजन पर्याय चल रही है, नाम उसको बताता है, इसलिए उस अपेक्षा से रुजुसूत्र ने उसको स्वीकार करता है। रुजुसूत्र ने वो द्रव्य पहले था बाद में होगा उसकी कुछ नहीं, उसको स्वीकार ही नहीं वो। अभी आगे चार नंबर ऊपर पढ़ेंगे, सद्दनो रुजुसूत्र के बाद शब्द नय का नंबर आता है। सद्दनो नाम वेणा भाव वेणाम च इच्छति, शब्द नय नाम वेदना और भाव वेदना को स्वीकार करता है। रुजुसूत्र नय ने जिन शब्दों को जिन नामों को स्वीकार किया है या जिन पदार्थों को पर्यायों को स्वीकार किया है उसमें से शब्द नय और थोड़ा ज्यादा चूसी होता है, जैसे हम कहते हैं चालनी लगाते हैं, तो कुछ शब्दों को स्वीकार करेगा कुछ को नहीं स्वीकार करेगा। तो यही पूछ रहे हैं कि वो नाम और भाव को स्वीकार करता है तो द्रव्य निक्षेप को क्यों नहीं स्वीकार करता, ये उनका सवाल है। समाधान, एक तो शब्द नय की अपेक्षा दूसरी पर्याय का संक्रमण मानने में विरोध आता है, दूसरे वह शब्द भेद से अर्थ भेद के कथन करने में व्यापृत रहता है। क्या कहना चाहते हैं, यानी किसी एक पर्याय रूप से परिणत द्रव्य को ही स्वीकार करता है, द्रव्य निक्षेप में क्या है उसके आगामी पर्याय को भी वर्तमान में उसका उपचार कर सकते हैं, जैसे हमने श्रेणिक राजा की बात बताई आपको, या अन्य कोई चीज की, जैसे चावल है और भी चावल हम धो रहे चढ़ाने के लिए, क्या बना रहे, भात, अरे भात तो जब होगा तब भात कहेंगे, अभी वो तो कच्चा है उसको नहीं कहेंगे, परंतु शब्द ने तो उसको स्वीकार ही नहीं करने का, अन्य पर्याय रूप परिणाम ना उसको स्वीकार नहीं है, वर्तमान की पर्याय को ही स्वीकार करता है, वो तो एक बात। और दूसरी बात क्या है, शब्द भेद से अर्थ भेद के कथन करने में व्यापृत रहता है, जैसे इंद्र के लिए इंद्र भी है, पुरंदर भी है और वो शक्रेंद्र भी है, शक्र भी है, परंतु वो तीनों नाम इसको स्वीकार नहीं है। जैसे स्त्री के लिए भार्या भी कहेंगे, कलत्र भी कहेंगे, परंतु शब्द ने उसको स्वीकार नहीं, क्योंकि कलत्रे शब्द नपुसक लिंगी है। हाँ, तो लिंग भेद हो जाएगा। तो ऐसे अलग अलग शब्दों को वो स्वीकार नहीं करता, इन स्पेसिफिक शब्दों को स्वीकार करेंगे, इसलिए उसमें वो अर्थ करने में वो व्यापृत यानी बिजी रहता है। आगे के दो एक वाक्य, वही अभी दो हमने वाक्य पढ़े ने, वही फिर रिपीट हुआ है ब्रह्मा, तो वहां से वो काट लेना एक ब्रैकेट करके। एक तो शब्द नहीं की अपेक्षा दूसरी पर्याय का संक्रमण मानने में विरोध आता है, और दूसरे वह शब्द भेद से अर्थ भेद को कथन करने में व्यापृत रहता है। ये पूरा जो है ना, दो वाक्य रिपीट हुए हैं, पहले जो हमने पढ़े वही वाक्य फिर आगे के, तो वो ब्रैकेट करके उसको छोड़ देना। फिर चौथी लाइन में यहां से पढ़ेंगे, अतः शब्द नय में नाम और भाव निक्षेप की ही प्रधानता रहती है, ही लगाया, अन्य निक्षेपों की प्रधानता नहीं रहती, यानी ना उसको शब्द नय को ना उन स्थापना भेद मिला आपको। चौथे लाइन में व्यापृत रहता है, वहां तक ब्रैकेट कर देना, क्योंकि वही दो वाक्य रिपीटेड है। तो कहते अतः शब्द नय में नाम और भाव निक्षेप की ही प्रधानता रहती है, यानी वो स्थापना निक्षेप को नहीं मानता और द्रव्य निक्षेप को नहीं मानता, अन्य निक्षेपों की प्रधानता नहीं रहती, इसलिए शब्द नय द्रव्य निक्षेप को स्वीकार नहीं करता। एक साथ कहने के लिए असमर्थ होने से यह नय प्ररूपणा यद्यपि सूत्र में पीछे कही गई है, तो भी निक्षेपार्थ प्ररूपणा से पहले ही उसे कहना चाहिए, अन्यथा निक्षेपार्थ की प्ररूपणा नहीं बन सकती। क्या कहना चाहते हैं, हम एट ए टाइम तो नय और निक्षेप दोनों नहीं कह सकते, तो पहले नय क्या कहेंगे, तो फिर उसका जो विषय है निक्षेप उसकी चर्चा होनी चाहिए थे, परंतु एक साथ नहीं कह सकते, इसलिए अभी बाद में बताया। अब प्रकृत वेदना की प्ररूपणा करते हैं, यानी हमने ये निक्षेप लगाए और वो कौन से निक्षेप, कौन से नय का विषय वो भी बताया है। कौन से हमने निक्षेप बताए, नाम स्थापना द्रव्य भाव, द्रव्य के भी आगम नो आगम बहुत भेद किए, उसमें भी वो तद्व्यतिरिक्त वगैरह भेद किए, बहुत सारे भेद किए। तो इनमें से यहाँ जो विषय चलेगा इस पुस्तक में, कौन से निक्षेप वाले किसको वेदना कहकर यहाँ कह रहे हैं, क्योंकि ना केवल नाम वेदना, ये नाम है वो भी नाम, उसको भी वेदना कहेंगे, वो जानने वाले जीव को भी वेदना कहेंगे, तो यहाँ कौन सी वाली वेदना समझना, ये प्रश्न है। तो प्रकृत वेदना, प्रकृत यानी वर्तमान जो विषय अपना चलेगा, सांप्रत जिसको कहेंगे, उस वेदना की प्ररूपणा करते हैं। तो कहते इन वेदनाओं में से कौन सी वेदना प्रकृत है, कौन सी विवक्षित है, किसकी बात चलेगी यहाँ पर इस पुस्तक में तो कहते द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा बंध उदय और सत्वरूप नो आगम कर्म द्रव्य वेदना प्रकृत है। देखो क्या कहना चाहते हैं, द्रव्य निक्षेप के दो भेद किए थे आपको याद होगा तो, आगम और नो आगम। नो आगम में तीन भेद किए थे, ज्ञायक शरीर, उस जीव जो भविष्य में जानेगा वो भावी भव्य जिसको कहा था, तद व्यतिरिक्त, वो जो तद व्यतिरिक्त वाला भेद था उसमें कर्म और नो कर्म की बात की थी, उसमें जो जो कर्म की बात है उस कर्म को यहाँ वेदना कह रहे हैं। तो कहते उसको क्या कहें, द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा, यानी उसमें कौन सा नय लगता है, कौन सा नय उसको जानता है, तो द्रव्यार्थिक नय जानता है, उसकी अपेक्षा। अब ये नो कर्म वेदना किसको कहेंगे, नो आगम कर्म वेदना किसको कहेंगे, तो बंध उदय और सत्वरूप नो आगम कर्म द्रव्य वेदना प्रकृत है, यानी वो ज्ञानावरणादि कर्म जो है बंध रूप है, सत्वरूप है, उदय रूप है, उसकी बात यहाँ चलेगी। तो उसको हमारी जो नय और निक्षेपों की अपेक्षा, उसको कौन सी कैटेगरी में फिट करेंगे, नो आगम कर्म द्रव्य वेदना, उसका पूरा नाम लेना है तो उसको हम ऐसा कहेंगे कि वो तद व्यतिरिक्त नो आगम, ये नो आगम का तद व्यतिरिक्त भेद है, तो नो आगम तद व्यतिरिक्त कर्म द्रव्य वेदना, इतना उसका लंबा चौड़ा नाम होगा। क्योंकि नौ आगम के तीन भेदों में से उसमें हमने तद व्यतिरिक्त वाला भेद लिया है और उसमें से भी कर्म की बात की है। ये द्रव्यातिक नय की अपेक्षा उसको कहेंगे। अब रुजु सूत्र नय की अपेक्षा, क्योंकि रुजु सूत्र ने सबको स्वीकार नहीं करता द्रव्यातिक नय को, तो रुजु सूत्र ने किसको वेदना कहेगा? तो रुजु सूत्र नय की अपेक्षा उदय को प्राप्त कर्म द्रव्य वेदना प्रकृत है, क्योंकि जो उदय को प्राप्त है ने उस रूप परिणमित द्रव्य लेना है। क्योंकि जो हमने भाव निक्षेप देखा था, भाव निक्षेप में आगम और नुआगम दो भेद किए थे। आगम में तो जीव को किया, जो जानने वाला जीव है, और जो नुआगम जो है तो उसमें भी उस रूप परिणमित कर्म लेना है। तो उदय को प्राप्त कर्म द्रव्य वेदना प्रकृत है। शब्द ने की अपेक्षा कर्म के उदय व बंध सत्व से उत्पन्न हुई भाव वेदना यहाँ प्रकृत नहीं है, क्योंकि यहाँ भाव की अपेक्षा प्ररूपणा नहीं की गई है। क्या कहना चाहते हैं? शब्द नय में जो अलग अलग शब्द नय तो उसमें भी स्पेसिफिक बताएं, तो उसमें जो कुछ कर्म के उदय की और बंध सत्व से उत्पन्न हुई जो भाव वेदना है उस रूप जीव में जो उत्पन्न होती है उसकी बात यहाँ मुख्यता नहीं है, ये कहना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ भाव की अपेक्षा प्ररूपणा नहीं की गई है, यानी जीवों के भाव की यहाँ बात नहीं है, उस रूप परिणत वाली बात नहीं है, यहाँ कर्मों की बात चलेगी। इस प्रकार वेदना नय विभाषणता नामक अनुयोग द्वारा समाप्त हुआ। देखो इस पुस्तक में चार ही अनुयोग लिए हैं, वेदना नाम और वेदना नय विभाषणता। अब जो तीसरा है, हाँ तीसरा अनुयोग द्वार कहते हैं उसका, अनुयोग द्वार है उसका अधिकार चैप्टर, ये पेज नंबर 13 पर है। वेयणा नाम विहाणम, देखो पहले हमने ये 16 के 16 देखे थे, जरा उसको निकालो। पेज नंबर 3 पर निकालो। उसे दो नंबर के पेज पर भी नीचे से दूसरी लाइन ले लो, पेज नंबर 2। नीचे से दूसरी लाइन लास्ट में, जो पुद्गल स्कंद बंध उदय और सत्व रूप से जीव में स्थित है, यानी ये जो ज्ञानावरणादि कर्म की बात है, उनमें किस किस नय का कहाँ कहाँ कैसा प्रयोग होता है, इस प्रकार नय के आश्रय से प्रयोग की प्ररूपणा करने के लिए वेदना नाम विधान अधिकार आया है। समझ में ना? तो ये वेदना नाम विधान अधिकार यहां चलेगा। अब सूत्र पढ़ते हैं। वेयणा नाम विहाणेति नेगम वबहाराणम नाना वर्णीय वेयणा दंसना वर्णीय वेयणा वेयणीय वेयणा मोहनीय वेयणा आऊव वेयणा नाम वेयणा गोद वेयणा अंतराय वेयणा। अब वेदना नाम विधान का अधिकार, इसी का अर्थ पढ़ रहे अभी हम। नैगम व व्यवहार नय की अपेक्षा, अब कौन सा नय किसको क्या बताता है उसकी बात करें। नैगम नय और व्यवहार नय, व्यवहार नय क्या करता है उसमें भेद करता है, और नैगम ने दोनों को जो स्वीकार है द्रव्य पर्याय को सब कुछ। तो ज्ञानावरणीय वेदना, दर्शनावरणीय वेदना, वेदनीय वेदना, मोहनीय वेदना, आयु वेदना, नाम वेदना, गोत्र वेदना, नाम वेदना और गोत्र वेदना के बीच में एक कॉमा लगाना, और अंतराय वेदना, यहाँ कॉमा नहीं चाहिए। इस प्रकार वेदना 8 भेद रूप है। जो हम कर्मों के नाम है ना उसी को लेना है, क्योंकि हमने वो कौन सा निक्षेप क्या करना है वो तो हमने देख लिया है। शंकाकार पूछते हैं, इस सूत्र में वेदना नाम विधान यह पद किस लिए आया है, यानी ये 8 भेद बताने थे तो उसको वेदना नाम विधान ऐसा क्यों, अधिकार का नाम ऐसा क्यों लिया है? उसका समाधान, प्रकृत वेदना के विधान का कथन करने के लिए और उसके नाम का निर्देश करने के लिए वेदना नाम विधान पद आया है। यानी यहाँ का अधिकार का क्या, वेदना के विधान, विधान यानी उसका जो कुछ डिफरेंस प्रोसेस जो है, उसके जो अनेक प्रकार है, उसकी बात यहाँ बताई जाएगी। उसमें पहले नैगम व व्यवहार ने की अपेक्षा वेदना का विधान करते हैं, वह इस प्रकार है। जो वह नो आगम द्रव्य कर्म वेदना कही है, अभी हमने देखा था 12 नंबर के पुस्तक पर कि यहाँ कौन सी वेदना प्रकृत है, किसको विषय कर रहे हैं, तो वहां बताया था कि द्रव्यार्थ है कि नहीं की अपेक्षा वो नो आगम द्रव्य कर्म वेदना प्रकृत है, वही बात यहाँ बता रहे हैं। उसमें से वहां द्रव्यार्थिक ने इतना ही कहा था, यहाँ तो नैगम व्यवहार कहेंगे। क्यों, सभी कर्मों को मिलकर कहना है तो केवल वेदना कहते, वो संग्रहने का विषय हो जाता, हमें भेद करके उसके और बताने हैं, इसलिए उसको व्यवहार नहीं कर लिया। तो कहते जो वह नो आगम द्रव्य कर्म वेदना कही है वह ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय के भेद से 8 प्रकार की है, क्योंकि ऐसा नहीं मानने पर, जो कर्मों में 8 अगर प्रकार नहीं मानेंगे, देखो आगे क्या कहने वाले हैं, कर्मों में 8 जुदे जुदे प्रकार है, तभी जीवों में जुदा जुदा निमित्त पने से कार्य हो रहा है। जीव स्वयं कर रहा है, परंतु यहाँ सारी कथनी निमित्त से हो रही है। ऐसा नहीं समझना कि इसमें से और अध्यात्म की उसमें ग्रंथ में कोई विरोध है, ऐसा नहीं समझना। कथन पद्धति जुदी जुदी होती है। तो यहाँ कहते हैं कि अगर हम कर्मों में ही ऐसे 8 भेद नहीं मानेंगे तो, लिखा ना नीचे से तीसरी लाइन में, ऐसा नहीं मानने पर जो अज्ञान, देखो ऊपर अगर हम 1, 2, 3, 4, 8 नाम देंगे तो एक के साथ एक को मिलाना, ऊपर ज्ञानावरणी अगर अलग है ऐसा नहीं मानेंगे तो अज्ञान, अदर्शन, सुख दुख वेदन व मोहिवेदिनी का कार्य, मिथ्यात्व व कषाय मोहनीय का कार्य, कॉमा लगा लो, भवधारण आयु का कार्य, शरीर नाम का कार्य, गोत्र रूप गोत्र का कार्य एवं वीर्यादि व अंतराय जो रूप 8 प्रकार का कार्य दिखाई देता है वह नहीं बन सकता है। क्या कहा, कर्मों में अगर 8 अलग अलग जुदे भेद नहीं मानेंगे तो उनके उदय रूप जो कार्य जीव में दिखाई देते वो नहीं दिखेंगे। पर ऐसा तो होता नहीं, वो दिखाई देते हैं तो वहां जो कारण रूप जो है उसमें भी भेद होना ही चाहिए। कारण के भेद से कार्यों में भेद दिखाई दे रहा है, ये कहना चाहते हैं। जीव में जुदे जुदे कार्य दिखाई दे रहे हैं तो वहां कर्मों में भी जुदे जुदे उसके स्वभाव उसका जुदा जुदा होनी चाहिए। यदि कहा जाए यह जो 8 प्रकार का कार्य भेद दिखाई देता है वह कारण भेद के बिना भी बन जाएगा, क्या कहना चाहते हैं, कार्य में जो भेद है वो एक ही कारण से अलग अलग जुदे कार्य हो जाए, ऐसा अगर मानेंगे, क्या कथन क्या होता है, यदि ऐसा हो तो कि जो कार्य भेद दिखाई दे रहे, क्या कार्य भेद है, कहीं तो अज्ञान है, अदर्शन है, मिथ्यात्व कषाय है, और जो तो कुछ अन्य भवधारण वगैरह, ये जो कार्य भेद बताए हैं वो कारण के भेद बिना नहीं, कर्म तो एक ही है और उसी के ही अलग अलग कार्य हो गए, ऐसा अगर मानेंगे तो, ऐसा मानना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अन्यत्र ऐसा पाया नहीं जाता। यानी अन्यत्र तो कारण के भेद से कार्य के भेद दिखाई देते हैं, अन्यत्र तो ऐसा दिखता नहीं है। यानी एक ही कारण से जुदे जुदे कार्य हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। कौन सा एक ही कार्य, अभी जो हम मान रहे सब, क्या कि शुभ भाव हो रहा है तो उससे बंध भी हो जाए और मोक्ष में भी हो जाए, मोक्ष भी मोक्ष मार्ग भी मिल जाए, क्या ये हो सकता है, एक कार्य से एक ही कार्य होना चाहिए, शुभ भाव से या तो बंध होगा या तो मोक्ष होगा, और लोग क्या मान रहे हैं, नहीं ये करते करते मोक्ष हो जाएगा, ये विपरीतता होगी ना उसके मानने में। यहाँ क्या कह रहे, यहाँ जीव में अलग अलग कार्य दिख रहे हैं तो कर्मों में भी अलग अलग वैरायटी होनी चाहिए, ये सिद्ध किया उन्होंने, न्याय से सिद्ध कर दिया। अतः ज्ञानावरणी आदि वेदना 8 प्रकार की है यही सिद्ध हो जाता है। फिर शंका का है। देखो शंका स्वयं आचार्य ही उठा रहे हैं, शिष्य के मुंह में डाल रहे हैं, क्योंकि वो तो विषय से यानी कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, संशय रहित ऐसा ज्ञान हो जाए, इसलिए ये चर्चा चल रही। तो कार्य के भेद से उदयगत कर्म आठ प्रकार का भले ही हो, अभी उन्होंने क्या स्वीकार किया, कार्य ने जो जीव में जो निमित्तपना बंध रहा है वो बंध के समय के कारण नहीं हो रहा है, सत्ता में पड़ा है उसके कारण नहीं हुआ, जब उदय में आता है तभी होता है। कर्म का उदय ही उसका फल दे रहा है, सत्ता में पड़े पड़े कोई फल नहीं दे रहा है। इसलिए प्रश्न क्या पूछा, देखो फिर से, कि कार्य के भेद से उदयगत कर्म यानी उदय में आने वाला कर्म आठ प्रकार का भले ही होवे, क्योंकि उससे उसकी उत्पत्ति होती है, यानी सत्ता में पड़ा हुआ कर्म कोई फल नहीं देता है। पार्श्वनाथ तो तीन भवों से तो तीर्थंकर प्रकृति बांधते आए, पहले मनुष्य भव में बांधी थी, फिर स्वर्ग में गए, फिर लौट कर आए, तभी भी बंधी चल रही थी, सत्ता में तीर्थंकर प्रकृति और अन्य महान कर्म जो पुण्य कर्म पड़े थे, फिर भी उन्होंने वो उपसर्ग क्यों दूर होने में मदद नहीं की उस पुण्य ने, उनके ऊपर जो उपसर्ग हुआ तो इतना बड़ा वो तीर्थंकर प्रकृति जैसा महान पुण्य है, तो उसने फल क्यों नहीं दिया। तो तीर्थंकर प्रकृति का उदय तो तेरहवें में आएगा, तभी उसका फल मिलेगा। सत्ता में पड़ा हुआ कर्म कोई फल नहीं देता है। अभी भी हम देखते हैं कोई भले है जीव, बहुत हम कहेंगे वो तो पुण्य क्रियाओं में लीन है, वो समझता भी है कि मैंने ऐसे कोई पाप भी नहीं किया है, उस पर ऐसे कोई संकट आते हुए दिखते हैं कि नहीं, शरीर का रोग हो या अन्य कोई प्रतिकूलता हो, उसको लगता है ऐसा क्यों, मैंने तो कुछ नहीं किया है, ऐसा लगता है ना उसको। परंतु वो पुण्य भले वो कर रहा है, पर उसका उदय आएगा तब उसका फल मिलेगा। अभी उदय किसका आ रहा है, पहले बंधे हुए पाप का। तो यही कह रहे हैं कि सत्ता में पड़ा हुआ तो कुछ फल नहीं देता, तो आप उदय में आने वाले कर्म आठ प्रकार से उदय में आते ऐसा मानो। फिर से पढ़ते हैं, कार्य के भेद से उदयगत कर्म आठ प्रकार का भले ही हो, क्योंकि उससे उससे नहीं उदय से उसके ने कार्य की उत्पत्ति होती है, किंतु बंध और सत्व आठ प्रकार के नहीं हो सकते। बंध ने जिस समय वो बंधा कर्म कार्मानुवर्गणा कर्म रूप से आकर जीव के प्रदेशों में आ गए उसको हम कहेंगे बंध, और बंधने के बाद जब तक उदय नहीं हुआ तो सत्ता में पड़ी रहते उसको कहेंगे सत्व। तो वो तो आठ प्रकार का ऐसा हम नहीं मानेंगे, वो एक ही है, और जब उदय में आते तो आठ प्रकार से होकर उदय में आता है ऐसा मान लो, ये उसका प्रश्न है, क्योंकि उनका कार्य नहीं पाया जाता, क्योंकि बंध और उदय का कोई कार्य नहीं, उसका कोई निमित्तपना नहीं बन रहा है जीव के साथ, अभी जब उदय में आएगा तब उसका फल मिलेगा। समाधान, नहीं, क्योंकि जब उदय आठ प्रकार का है तब उदय का कारण सत्व और सत्व का कारण बंध भी आठ प्रकार का सिद्ध होता है। क्या कहना चाहते हैं, आठ प्रकार का जब वो पहले बताया आठ प्रकार का कार्य है तो आठ प्रकार का कारण है, तो कारण यानी उदय में आठ प्रकार का है, तो उदय किसका होगा, जो सत्ता में है उसी का उदय होगा, इसलिए सत्ता में भी आठ प्रकार पाए जाते हैं। तो कहते सत्ता में कहाँ से आएंगे, बंध ही नहीं तो आठ प्रकार से, तो सत्ता में आठ प्रकार कहाँ से आए, तो बंध भी आठ प्रकार का है, सत्ता भी आठ प्रकार की है, उदय भी आठ प्रकार का है, ये सिद्ध हो गया। इस प्रकार वेदना के भेदों की प्ररूपणा की, प्ररूपणा ने उसका कथन किया, व्याख्यान किया। अब उसके नामों की प्ररूपणा करते हुए इस प्रकार है, ये उनके जो आठ नाम जो पड़े हैं, वो नामों का अर्थ ऐसा क्यों लेना, उसका निरुक्ति यानी वो शब्द कैसे तैयार हुआ, उसको कहते उसका निरुक्ति अर्थ, यानी उसके शब्दार्थ से हम उसका कार्य समझने की कोशिश करेंगे। वह इस प्रकार है, ज्ञानावरणीय वेदना, इसका निरुक्ति अर्थ है ज्ञान का जो आवरण करता है वह ज्ञानावरणीय कर्म द्रव्य है। क्या कहते हैं, निरुक्ति अर्थ है शब्द कैसे बना, तो जो ज्ञान को आवरण करता है वो ज्ञानावरण है, और ज्ञानावरणीय रूप वेदना ही ज्ञानावरणीय वेदना है। यहाँ तत्पुरुष समास नहीं करना, यानी ज्ञानावरणीय की वेदना ऐसा नहीं लेना, ज्ञानावरणीय रूप वेदना है, क्योंकि द्रव्यार्थिक नयों में भाव की प्रधानता नहीं पाई जाती। ये जो समास यानी शब्द बनते हैं उसमें तो अलग अलग अपेक्षाओं से वो समास बनते हैं, वो जोड़ शब्द जो बनता है वो अलग अलग अपेक्षाओं से। यहाँ ज्ञानावरणीय की वेदना नहीं लिया, ज्ञानावरण रूप वेदना लिया। और ज्ञानावरण शब्द कैसे तैयार हुआ, ज्ञान का आवरण करने वाला वो ज्ञानावरण, वो भी एक समास है, और ज्ञानावरणीय वेदना ये भी एक समास है, परंतु वो दो समास अलग अलग अपेक्षाओं से हुए हैं। जैसे देखो लौकिक में भी जो शब्द बनते हैं ना, जैसे हम कहते हैं आकाशफूल, आकाशफूल है ना, आकाश का फूल, कोई होता ही नहीं है, तो का लगकर वो समास हो गया, उसको षष्ठी तत्पुरुष कहते हैं। और हम कहते हैं कूड़ा कचरा, कूड़े के अर्थ में कचरा होता है, कूड़े का कचरा ऐसा नहीं होता है। ऐसे जो शब्द बनते हैं तो उसके इसको समास कहते हैं, वो समासों में अलग अलग प्रकार के समास बनते हैं, उसकी बात यहाँ है। इन नयों में पदों का समास ही योग्य है। पदों का समास यानी ज्ञानावरणीय एक पद हुआ, एक शब्द हुआ, और वेदना एक शब्द हुआ, दो शब्द जोड़कर उन्होंने बता दिया कि ज्ञानावरणीय ही वेदना है, वो ज्ञानावरणीय रूप वेदना है, इसलिए शब्दों को जोड़कर वो समास बनाया। क्योंकि एक तो विभक्ति का लोप हो जाने से एक पदत्व पाया जाता है, और दूसरे उनका एकत्र अस्तित्व भी देखा जाता है। यानी विभक्ति का लोप है, जैसे हम कहें ज्ञान को आवरण करने वाला वो विभक्ति हुई, ज्ञान को आवरण करने वाला या ज्ञान का आवरण करने वाला, तो विभक्ति का लोप का लोप हुआ तो ज्ञानावरण शब्द हुआ। उन ज्ञानावरण और वेदना ये दो शब्द जोड़ दिए उन्होंने, इसलिए अलग अलग पद्धति से समास हो जाते हैं। यहाँ वेदना शब्द का भी प्रत्येक के साथ प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि आठों वेदनाएं भिन्न भिन्न हैं, इसलिए उनका एक वेदना शब्द वाचक है ऐसा मानने में विरोध आता है। ऊपर जो हमने जो सूत्र पढ़ा था, देखो सूत्र निकालो, उसमें ज्ञानावरण दर्शनावरण करके सबको वेदना नहीं कहा, हर एक के साथ वेदना 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 शब्द लगाए, क्योंकि हर एक जुदी जुदी है, ये उनको बताना था। यही कह रहे कि प्रत्येक के साथ वेदना शब्द का प्रयोग करना चाहिए, अलग अलग ज्ञानावरणीय वेदना दर्शनावरणीय वेदना इस तरह से, क्योंकि वो आठ जुदे जुदे है, भिन्न भिन्न है, इसलिए वाचक है ना बताने वाला शब्द। कल बात आई ना, शब्द को वाचक कहते हैं, वो जिसको बताता है उसको वाच्य कहते हैं। तो वाच्य आठ प्रकार के है, तो वाचक शब्द भी आठ प्रकार के, पूरा नाम ज्ञानावरणीय वेदना ऐसा लेना चाहिए। अब हमने दो नए देखे थे, कौन से दो नयों ने इसको विषय किया था, नैगम और व्यवहार, नैगम और व्यवहार नय की बात हो गई, तो ये आठ प्रकार बताए। अब यहाँ संग्रह नय, संग्रह नय का अर्थ क्या होता है, इकट्ठा करना, भेद करना उसका प्रयोजन नहीं, भेद करना वो व्यवहार नय का प्रयोजन है, इकट्ठा करना वो संग्रह नय का प्रयोजन है। तो 15 नंबर पृष्ठ पर आते हैं, संग्रहस अठन्नम पि कम्माणम वेयणा, संग्रह नय की अपेक्षा आठों ही कर्मों की एक वेदना होती है। यानी उसमें भेद करना उसका प्रयोजन नहीं है, हर एक नय का काम जुदा जुदा है, वो सबको इकट्ठा करके वेदना इतना ही कहेगा, भले उसमें आठों आ गए परंतु वो भेद करना उसका वो व्यवहार नय का, हर एक नय का अपना अपना कार्य, अपना अपना प्रयोजन, अपना अपना अलग अलग है। तो यहाँ कहते हैं संग्रह नय की अपेक्षा आठों ही कर्मों की एक वेदना होती है। यहाँ वेदना का विधान पूर्व के समान कहना चाहिए, क्योंकि उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है। अब नाम विधान का कथन करते हैं, वो इस प्रकार है, आठों ही कर्मों की वेदना ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि आठ इस संख्या में ज्ञानावरणादि कर्मों के सब भेद संभव है। यानी सब भेदों को इकट्ठा करके उसका एक वेदना नाम देते हैं, परंतु वो संग्रह नय का है, व्यवहार नय में हर एक के साथ वेदना 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 शब्द लगाया था। सूत्र में जो वेयणा एक वेदना शब्द कहा है, सो उससे वेदना के सब भेदों की अविनाभावी एक वेदना जाति का ग्रहण होता है। जब हमने कहते हैं ये सबको जीव है, जीव है कह के सभी अनंत जीवों को एक नाम देते हैं जीव है, तो उसमें सभी भेदों का उसमें स्वीकार है, संसार भी है, मुक्त भी है, एकेंद्रीय द्विंद्रीय, सभी भेदों को मिलकर एक जाति सबकी समान है, तो उसको हमने एक नाम दे दिया। तो यहाँ एक वेदना कहने से उसमें सभी प्रकार उसमें आ गए भेद सब, इसलिए कहते वेदना के सब भेदों की अविना भावी एक वेदना जाति का ग्रहण होता है। ये जाति को मिलकर एक वेदना कह दिया, क्योंकि इनके बिना संग्रह वचन नहीं होता। संग्रह ने उस सबको इकट्ठा करना, तो वेदना नाम से सब उसमें गर्भित हो गए। विशेषार्थ संग्रह नय का काम, यानी संग्रह नय किसको विषय करता है, एक सामान्य धर्म द्वारा, जो सब में जो कॉमन जो है सामान्य धर्म द्वारा अवांतर सब भेदों का संग्रह करना, यानी भेदों को गौण करके सबको इकट्ठा कर देना, वो है इसका संग्रह नय का काम। उसमें सामान्य धर्म द्वारा उसको इकट्ठा किया जाता है। जब हमने कहा जीव, तो संसारी हो सिद्ध हो उसमें सामान्य क्या है, चेतन उपयोग वाले, वो सभी उपयोग स्वरूप जीव है, इकट्ठा किया। जब हम कहेंगे एकेंद्रीय जीव, तो वो पृथ्वी का एक, अग्नि का एक, जल का एक भेद होने पर भी सामान्य धर्म क्या है, एकेंद्रीयपना, एकेंद्रीय जाति, ये समान धर्म है, तो उसको इकट्ठा किया, वो हुआ संग्रह नय। और उसी को ये एकेंद्रीय, ये द्विंद्रीय, तीनद्रीय हमने भेद किए, तो उसी को वो व्यवहार नय में चले जाएंगे। ये कथनकार का अभिप्राय क्या है, वो संग्रह करना चाहता है कि किसी भेद करना चाहता है, उस पर उसको उस नय का नाम दिया जाएगा। क्योंकि संग्रह नय में अभेद की प्रधानता होती है, यानी कोई सामान्य धर्म के द्वारा सबको इकट्ठा करना, ये संग्रह नय का काम है, इसलिए अभेद की प्रधानता है। यही कारण है इस नय की अपेक्षा आठों ही कर्मों की घटित एक वेदना कही जाती है। यस, अभी तक हमने नयगम व्यवहार इकट्ठा लिया, ये संग्रह की बात हो, अब आगे बढ़तेंगे, ऊपर पढ़ेंगे। पहले उजुसुदस्य नो नानावर्णीय वेणा, नो दंशनावर्णीय वेणा, नो मोहनीय वेणा, नो आयुवेणा, नो नाम वेणा, नो बोध वेणा, नो अंतराय वेणा, वेयणीय चेव वेणा। एक वेदनीय को ही वेदना, क्योंकि वेदना यानी सुख दुख के कार्य, तो उसमें वेदनी निमित्त होता है, तो बाकी को वो स्वीकार ही नहीं करता है। देखो फिर पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ते। रुजु सूत्र नय की अपेक्षा, रुजु सूत्र नय वर्तमान पर्याय को स्वीकार करता है। न ज्ञानावर्णीय वेदना है, न दर्शनावर्णीय वेदना है, न मोहनीय वेदना है, न आयु वेदना है, न नाम वेदना है, न गोत्र वेदना है, और न अंतराय वेदना है, किंतु एक वेदनीय ही वेदना है। आप कहेंगे कभी तो सही इसको कहते हैं, कभी उसको कहते हैं, उस नय का वो कार्य है, कौन से नय का कौन कथन है उसको हमको स्वीकार करना चाहिए। तो यहाँ एक वेदनीय को ही वेदना कहा। अब शंकाकार पूछते हैं, रुजु सूत्र नय चूंकि पर्यायार्थिक है, अतः उसका द्रव्य विषय कैसे हो सकता है, क्योंकि वेदनीय को ये वेदनीय द्रव्य है ना, उसको उसने कैसे स्वीकार किया। समाधान, नहीं, क्योंकि व्यंजन पर्याय को प्राप्त द्रव्य उसका विषय है, यानी उस वर्तमान पर्याय को प्राप्त द्रव्य उसको उसने विषय किया है। ऐसा मानने में विरोध नहीं आता। यदि कहा जाए, यानी सामने वाला यदि ये कहे कि रुजु सूत्र नय के विषयभूत द्रव्य को उत्पाद विनाश लक्षण मानने में विरोध आता है, सो भी बात नहीं है। क्या कहना चाहते हैं, रुजु सूत्र ने पर्याय को, वर्तमान पर्याय को विषय करता है। अब यहाँ कहते हैं कि उसका जो विषयभूत द्रव्य है, यानी उस पर्याय रूप से परिणत द्रव्य लेना है, तो उस द्रव्य को उत्पाद विनाश लक्षण मानने में विरोध आता है, सो भी बात नहीं। कोई ऐसा कहेंगे वो उत्पन्न और विनाश होने वाला द्रव्य उसका विषय नहीं है, तो कहते ये कोई उसमें दोष नहीं आता है, वो विरोध नहीं, क्योंकि विवक्षित पर्याय का स्वभाव ही उत्पाद है और विवक्षित पर्याय का अभाव ही व्यय है। यानी हम वो द्रव्य किस रूप से है, अभी वर्तमान में उसका जो जिस पर्याय रूप से उत्पाद है, और किसी पूर्व पर्याय रूप से विनाश है। इसके सिवा अवस्थान स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता। ये जो द्रव्य जो पाया जाता है हर समय वर्तमान पर्याय का उत्पाद और पूर्व पर्याय का विनाश ही तो वो द्रव्य है, उसके अलावा अन्य रूप से तो कोई उसकी स्थिति नहीं पाई जाती है, ये कहना चाहते हैं। पेज नंबर 16 पर हम आए, ये रुजु सूत्र ने उसको विषय करता है तो वो उसको केवल वेदनीय को ही वेदना कहता है, उसकी बात चल रही है। चौथी लाइन, मैंने पहले पूछा था कि रुजु सूत्र ने वो उत्पाद व्यय रूप वो उसको कैसे स्वीकार करता है, तो वो वर्तमान का उत्पाद होना तो उस रूप से द्रव्य विद्यमान है, द्रव्य उस रूप से परिणमित है और उसी समय पूर्व पर्याय नहीं रही, उसको व्यय कहेंगे। अब चौथी लाइन, यदि कहा जाए कि प्रथम समय में पर्याय उत्पन्न होती है और द्वितीयादि समयों में उसका अवस्थान होता है, सो यह बात भी नहीं है, क्योंकि उसमें प्रथम द्वितीयादि समयों की कल्पना का कोई कारण नहीं। ये बहुत महत्व की बात है। जब हम कहते उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, सत द्रव्य का लक्षण है, तो प्रत्येक पर्याय उत्पन्न होती है और नेक्स्ट समय में विनाश होती है। ऐसा नहीं कि एक समय में उत्पन्न हुई, दूसरे समय में रही और तीसरे समय में व्यय हुई, ऐसा नहीं है ये कह रहे। देखो ये जो दो मान लेते हैं, ये दो पर्याय उंगली पर देखो, ये दो पर्याय है, तो अभी इस पर्याय का उत्पादन ये पर्याय है, दूसरे समय में इसका है, ये नहीं रही उसी को व्यय कहेंगे। ऐसा नहीं कि ये उत्पन्न हुई फिर एक समय के लिए रही और फिर तीसरे समय में नष्ट हुई, ऐसा नहीं है। पर्याय का काल एक समय है, बस एक समय, और वो एक समय में वो उत्पाद रूप ही है, दूसरे समय में दूसरी पर्याय उत्पाद रूप है, तो ये इट इज नो मोर, तो उसको कहेंगे व्यय हुआ। ऐसा नहीं कि उत्पन्न हुआ फिर रहा फिर व्यय हुआ, ऐसा नहीं हुआ, बस उत्पन्न हुआ और दूसरे समय में दूसरे उत्पन्न हुए। नहीं तो कोई ऐसे मानते हैं, कथन भी ऐसे कोई पूछते भी है, उत्पन्न हुआ तो एक समय फिर रहा और फिर बाद में तीसरे समय, ऐसा नहीं है। यही ये कहते द्वितीयादि समयों में उसका अवस्थान नहीं है। फिर पढ़ते इसको चौथी लाइन, यदि कहा जाए कि, ऐसा अगर कोई माने कि प्रथम समय में पर्याय उत्पन्न होती है और द्वितीयादि समयों में उसका अवस्थान होता है, यानी वो दूसरे आदि यानी दूसरे तीसरे आदि समयों में रहती है, सो यह बात भी नहीं बनती, क्योंकि उसमें प्रथम द्वितीयादि समयों की कल्पना का कोई कारण नहीं है। पर्याय के पर्याय में कोई ये पहला समय दूसरा समय है ही नहीं, बस जो समय है उस समय उसको पर्याय कहेंगे, दूसरे समय में वो रहती ही नहीं है वहां पर। यदि कहा जाए उत्पाद ही अवस्थान है, सो भी बात नहीं है, क्योंकि एक तो ऐसा मानने में विरोध आता है और दूसरे उत्पाद स्वरूप भाव को छोड़कर अवस्थान का कोई अवस्थान का और कोई लक्षण पाया नहीं जाता। इस कारण अवस्थान का अभाव होने से उत्पाद व विनाश स्वरूप द्रव्य है यह सिद्ध हुआ। यानी द्रव्य है वो, देखो इसको द्रव्य को ही उत्पाद और व्यय स्वरूप कहा, पर वो पर्याय रूप से, एक पर्याय रूप से द्रव्य का उत्पाद हुआ और पूर्व पर्याय रूप से द्रव्य का विनाश हुआ, यह अपेक्षा यहाँ लगाकर बात कर रहे। यानी वो उत्पाद हुआ और उस समय उसका वो अवस्थित रहना है, वो वैसा का वैसा रहना, ऐसा कोई है ही नहीं द्रव्य का स्वरूप, वो उत्पाद वे उत्पाद वे उत्पाद वे इस रूप से ही द्रव्य पाया जाता है, ये कहना चाहते हैं। अवस्थान है वैसा का वैसा नहीं, उसी पर्याय रूप में कायम रहना उसको अवस्थान कहेंगे, तो ऐसे रहना हाँ, यानी कॉन्स्टेंट वैसा। अब ये वेदनीय को ही वेदना क्यों कहा, उसकी बात चल रही। वेदना का अर्थ सुख दुख है, क्योंकि लोक में वैसा व्यवहार देखा जाता है, समझे, हमको सुख का वेदन हुआ, हमको दुख का वेदन हुआ, ये लौकिक में कहा जाता है। और वे सुख दुख वेदनीय रूप पुद्गल स्कंद के सिवा अन्य द्रव्य कर्म द्रव्यों से नहीं उत्पन्न होते हैं। यहाँ लौकिक सुख दुख की बात चल रही, अतीन्द्रिय सुख की बात नहीं, उसमें कोई कर्म तो है ही नहीं निमित्त। तो यहाँ जो लौकिक में जिसको सुख और दुख कहा जाता है, उसमें वो साता असाता वेदनीय जो है उसका निमित्त बनता है। तो कहते वेदनीय रूप पुद्गल स्कंद के सिवा अन्य कर्म द्रव्यों से नहीं उत्पन्न होते, ये ज्ञानावरण से और मोहनीय से वो सुख दुख की कोई बात नहीं है, वो वेदनीय नाम का जुदा कर्म है वहां पर। क्योंकि इस प्रकार फल का अभाव होने से वेदिनी कर्म के अभाव का प्रसंग आता है। इसलिए प्रकृत में सब कर्मों का प्रतिषेध करके, प्रतिषेध यानी निषेध करके, उदयगत वेदनीय द्रव्य को ही वेदना ऐसा कहा है। वो भी उदयगत लिया क्योंकि ऋजु सूत्र ने उस रूप से पर्याय, वो पर्याय से परिणत द्रव्य को लेता है, तो उदयगत उदय में आए हुए वेदनीय कर्मों को ही वहां वेदना करके स्वीकार किया। अब शंकाकार पूछते हैं, आठ कर्मों का उदयगत पुद्गल स्कंध वेदना है, ऐसा यहाँ क्यों नहीं ग्रहण करते? क्योंकि यहाँ तो क्या बात कर रहे थे, उदयगत ही कर्म उसका फल देता है, तो ऋजु सूत्र ने उदयगत कर्म को ही, आठों कर्मों को उदयगत है तो सबको मिलकर वेदना कहो, ये प्रश्न है। समाधान, नहीं, क्योंकि वेदना को स्वीकार करने वाले ऋजु सूत्र ने के अभिप्राय में वैसा मानना संभव नहीं है, क्योंकि हमने देखा ना सुख दुख को ही वेदना कहा और वो उदयगत वेदनीय कर्म का ही कार्य है, इसलिए मात्र उसी को ये नहीं स्वीकार करता है, अन्य नयों ने स्वीकार किया है सबको, प्रत्येक नय का अपना अपना स्पेसिफिक काम है, उसकी बात चल रही है। पेज नंबर 17, अर्थात जबकि वेदना का अर्थ सुख दुख है तो वह ऋजु सूत्र नय की अपेक्षा, ये अपेक्षा भूलना मत, अलग 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 नयों की अपेक्षा अलग अलग कथन होते हैं। उदयगत वेदनीय स्कंध ही हो सकता है, वेदनीय स्कंध ने वेदनीय कर्म, उदयगत अन्य कर्म स्कंध वेदना नहीं हो सकता, उसको यहाँ ऋजु सूत्र ने उसको वेदना नहीं स्वीकार करता। और अन्य ऋजु सूत्र में अन्य ऋजु सूत्र संभव नहीं है, क्योंकि भिन्न भिन्न विषयों वाले नयों का एक विषय मानने में विरोध आता है, यानी अन्य नयों ने, जैसे पहले अन्य नयों ने ज्ञान आवरणी वेदना सब आठों कर्मों को वेदना करके स्वीकार किया था, अब यहाँ पूछ रहे हैं ये ऋजु सूत्र ने उसको क्यों नहीं कहता, तो अन्य अन्य नयों का विषय अन्य अन्य है, ये कहना चाहते हैं। यहाँ ब्रैकेट में फिर पढ़ते हैं, यही कारण है कि यहाँ ऋजु सूत्र ने की अपेक्षा वेदना शब्द द्वारा आठ कर्मों के उदयगत पुद्गल स्कंध नहीं ग्रहण किए गए हैं। अब जो हमने पढ़ा है उसी का विशेषार्थ यहाँ बता रहे हैं। यहाँ ऋजु सूत्र ने की अपेक्षा वेदना का क्या अर्थ है यह बतलाया गया है। सूत्र में इस नय की अपेक्षा केवल वेदनीय कर्मों को ही वेदना कहा है, जिससे ऋजु सूत्र नय का विषय विचारणीय हो गया है। ऋजु सूत्र पर्यायार्थिक नय का एक भेद है, अतः ऐसी शंका होना स्वाभाविक है कि ऋजु सूत्र और रू ह्रस्व चाहिए, दीर्घ हुआ है वो दो वाटी लगा ना, एक वाटी चाहिए, ऋजु सूत्र नय का विषय द्रव्य कैसे हो सकता है? इस शंका का जो समाधान किया है उसका भाव यह है कि एक तो व्यंजन पर्याय की अपेक्षा ऋजु सूत्र नय का विषय द्रव्य बन जाता है, यानी द्रव्य उस पर्याय रूप से परिणत है, कौन से व्यंजन पर्याय वाली बात, इसलिए उसको बना सकते हैं। दूसरे, उत्पाद और व्यय से द्रव्य सर्वथा स्वतंत्र पदार्थ नहीं है, यानी उस पर्याय से उत्पन्न हुआ द्रव्य ऐसा उसको ले लेना है, इसलिए इस अपेक्षा से द्रव्य को ऋजु सूत्र ने का विषय मानने में कोई बाधा नहीं आती, शेष कथन सुगम है। इसलिए क्या कहा, उस पर्याय से परिणत है, उदयगत वेदनीय कर्म लिया, उदयगत शब्द लगाया, यहाँ सत्ता में और बंध वाला द्रव्य यहाँ स्वीकार नहीं है। अभी तक हमने पहले नैगम और व्यवहार को इकट्ठा लिया, फिर संग्रह को लिया, अभी ऋजु सूत्र की बात हुई, अब शब्द की बात करेंगे। सद्द नयस्य वेयणा चैव वेयणा, शब्द नय की अपेक्षा वेदना ही वेदना है। शब्द नय की अपेक्षा, अपेक्षा शब्द डालो वहां पर, ब्रह्म शब्द नय की वेदना, वेदनीय द्रव्य हुआ है ना, शब्द नय की अपेक्षा वेदनीय द्रव्य कर्म के उदय से उत्पन्न हुआ सुख दुख अथवा आठ कर्मों के उदय से उत्पन्न हुआ जीव का परिणाम वेदना कहलाता है, द्रव्य नहीं, क्योंकि शब्द ने का विषय द्रव्य नहीं है। यहाँ कर्मों के उदय में हुआ जीव का परिणाम, उसको यहाँ वेदना कहा। इस प्रकार वेदना नाम विधान अनुयोग द्वार समाप्त हुआ। हाँ, ये भी चौथा ही बात, क्योंकि पूरी पुस्तक में ये चार ही विषय है, तो वेदना दोभ विहानम पूरी पुस्तक में चलेगा। अभी पहले हमने प्रस्तावना में देखा था जो 16 अनुयोग द्वार है ना, उसमें से चार अनुयोग द्वार सिर्फ पुस्तक का विषय है। हाँ, ये वेदना खंड में उसी को ले लिया है। अब सूत्र पहले पढ़ते हैं। ये चौथा नंबर है, वेयणा दौव विहानम, यानी वेदना द्रव्य विधान। पहले वेदना नाम विधान था, उसमें को अलग अलग नाम बताए थे उसके। वेयणा दौव विहाणे ती तथ्य इमानी तिन्नी अनियोगत दाराणी नादववाणी भवंती पदमीमांसा सामित्त मप्पा बहुएत्ति। अब वेदना द्रव्य विधान का प्रकरण है, उसमें पदमीमांसा, स्वामित्व और अल्पभूत्व, ये तीन अनुयोग द्वार ज्ञातव्य है। यानी इसमें तीन अधिकार हो गए अलग अलग, पदमीमांसा, स्वामित्व और अल्पभूत्व। वेदना पद का द्रव्य पद के साथ कर्मधारय समास है। वेदना द्रव्य विधान बताए ना, वेदना जो द्रव्य वह वेदना द्रव्य, यानी वेदना का द्रव्य वो वेदना द्रव्य, इसके विधान अर्थात भेद, उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट और जघन्य आदि अनेक है। ये जघन्य अजघन्य वो तो अन्य अन्य भेद करेंगे, उसको वो बताएंगे अभी, जिनका इस अधिकार में कथन किया गया है। यानी यहाँ पर उसके पदमीमांसा में या इसमें जो द्रव्य विधान जो है, इसमें उसके बहुत सारे अलग अलग भेद बताए गए हैं। विधान शब्द का व्युत्पत्ति अर्थ है विधीयते अनेन, वे व्युत्पत्ति अर्थ है, विधान शब्द कैसा तैयार हुआ कि जिसके द्वारा विधान किया जाए, विधीयते अनेन, यह वेदना द्रव्य विधान पद का अर्थ है। देखो हमने क्या ऊपर देखा, वेदना पद के साथ वो द्रव्य के साथ उसके, यानी वेदना का द्रव्य वह वेदना हुआ, फिर वेदना द्रव्य जिसके द्वारा विधान उसका हो जाता है वो वेदना द्रव्य विधान हो गया। इसके ये पद मीमांसा आदि तीन अनुयोग द्वार कहे जाते हैं, जानने चाहिए। ऊपर हमने सूत्र में देखा था पद मीमांसा, स्वामित्व और अल्पभूत्व। पद दो प्रकार का है, व्यवस्था पद और भेद पद, जिसका जिसमें अवस्थान है वह उसका पद अर्थात स्थान कहलाता है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। जैसे सिद्धि क्षेत्र सिद्धों का पद है, यानी जहां जिसका रहना है, अवस्थान है, वो उसका पद यानी स्थान कहलाता है। सिद्धों का स्थान क्या है, सिद्ध क्षेत्र, कौन सा, वो हम जाते हैं दर्शन करने, वो नहीं हो सिद्धालय जिसको हम कहेंगे। अर्थालाप अर्थ परिज्ञान का पद है, कहां भी है। देखो ऊपर एक सूत्र बताया है, गाथा, अथो पदेन गम्मई पदमिह अठरहिय मण भिलपम पदमत्थ सनिमेणम अत्थालावो पदम कुणई। अर्थ पद से जाना जाता है, यानी जो शब्द है ना हमारे लौकिक में भी, वो पद के द्वारा हमको अर्थ समझ में आता है उसका, तो अर्थ पद से जाना जाता है। यहाँ अर्थ रहित पद उच्चारण के अयोग्य है, इसका मीनिंग ही नहीं तो उसे कुछ प्राप्त ही नहीं होता हमको। पद अर्थ का स्थान है, यानी अर्थ उन पदों में रहता है, ये उसका अर्थ है। अतः अर्थोच्चारण पद को उत्पन्न करता है। यानी अर्थालाप पता है ना, अर्थ आलाप, अर्थ आलाप यानी वो अर्थ जो बताया जाता है वो पद के द्वारा बताता है, यानी अर्थ परिज्ञान यानी अर्थ का ज्ञान हमको होता है, किसी शब्द के द्वारा उसका अर्थ समझ में आ जाता है हमको। अब आते हैं 19 पृष्ठ पर, भेद विशेष और पृथक्त्व ये एकार्थक शब्द है, यानी तीनों शब्दों का अर्थ सेम है। पद शब्द का निरुक्ति अर्थ कहते हैं, पद शब्द कैसे तैयार हुआ उसको बता रहे हैं। पद्यते गम्यते परिच्छिद्यते यानी जो जाना जाए वह पद है, पद्यते का ही अर्थ गम्यते यानी जाना जाता है, उसी का अर्थ है परिच्छिद्यते, तीनों ही एकार्थ में ही बताए हैं, उसके द्वारा वह पद शब्द तैयार हुआ, जो जाना जाए वह पद है। भेद रूप ही पद भेद पद कहलाता है, भेद पद किसको कहना है, जो भेद रूप है उसको भेद पद कहेंगे। यहाँ उत्कृष्ट आदि भेद आदि रूप भेद पद का अधिकार है, यानी जो अलग अलग भेद बताने वाला है वो भेद पद अधिकार है, क्योंकि अभी हमने देखा था पद दो प्रकार के बताते हैं, व्यवस्था पद और भेद पद, ये पद की मीमांसा की जाती है। हाँ, तो इसमें उसमें कौन कौन से भेद है उसको यहाँ बताया जाता है। देखो अभी उसको आप नंबरिंग कर सकते हैं, उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जघन्य अजघन्य सादि अनादि ध्रुव अध्रुव ओज युग्म, अभी इसका अर्थ सब देखेंगे हम। ओम, ओम ही अलग शब्द है और विशिष्ट अलग शब्द है, ओम के बाद एक कॉमा लगा लो, ओम को 11 नंबर दे दो, विशिष्ट को 12 नंबर दे दो, और नो ओम नो विशिष्ट ये एक शब्द है वो तुमने डैश दिया ही है, ये 13 नंबर है, 13 ही है ये भेद। पद के भेद से यहाँ 13 पद है, यानी भेद पदों में यहाँ 13 अलग अलग पद बताए गए, ये सबका अर्थ भी बताएंगे वो। इन पदों की मीमांसा अर्थात परीक्षा, यानी अभी कोई भी हमको देखना है ज्ञानावरणीय है या उसके उसमें भी उसका द्रव्य कितना है, उत्कृष्ट है कि अनुत्कृष्ट है, उसकी स्थिति उत्कृष्ट है कि अनुत्कृष्ट है, ये सब बातें यहाँ वो ज्ञानावरणीय का जो बंधा है सादी है कि ध्रुव है कि अनादि है, वो सब बातें यहाँ बताएंगे। उस पदों की मीमांसा यानी परीक्षा की जाती है, यानी जैसे उत्कृष्ट पद है उसके आगे जो वो जघन्य के अजघन्य है, वो उत्कृष्ट जो होता है ज्ञानावरणीय का द्रव्य उत्कृष्ट बंध जब वहाँ होता है, वो अनादि से उत्कृष्ट है कि वो सादी होता है, ये सब बातें यहाँ बताई जाएगी। उसकी परीक्षा जिस अधिकार में की जाती है वह पद मीमांसा अनुयोग द्वार है। उत्कृष्ट आदि चार पदों के योग्य जीवों की प्ररूपना जहाँ की जाती है उसका नाम स्वामित्व अनुयोग द्वार है। उत्कृष्ट आदि चार पद यानी उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जघन्य और अजघन्य, यानी वो उत्कृष्ट बंध या अभी उसको कहेंगे उसका द्रव्य किसको होता है, अभी उसमें भी भेद करेंगे ना सब, तो वो कौन से जीव को होता है उत्कृष्ट किसको जघन्य होता है उसकी जहाँ बात बताई जाएगी उसको कहेंगे स्वामित्व। पहले पद बताए ना उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जघन्य अजघन्य वगैरह वगैरह, ये 13 पर नहीं स्वामित्व लगाना है, उत्कृष्ट वगैरह जो चार प्रकार है उसमें स्वामित्व बताएंगे, वो स्वामित्व अधिकार आ जाएगा। जहाँ इन चार पदों का अल्पभूत्व कहा जाता है वह अल्पभूत्व अनुयोग द्वार है, यानी उत्कृष्ट वाले जीव ज्यादा है कि जघन्य वाले ज्यादा है उसका अल्पभूत्व कहेंगे, वो उसमें आ जाएगा। अब यही हम रुकेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो। मैं